Vasudevaya. Om namo bhagavate Vasudevaya. Om namo bhagavate Vasudevaya. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग श्लोक संख्या 17 बोलिए। एवं गृहेषु भक्तानां प्रमत्तानां तत् इहया अत्यक्रामत् अविज्ञातः कालः परम दुस्तरः। एवं गृहेषु सत्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामन् अविज्ञातः कालः परम दुस्तरः। एवं गृहेषु सत्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामन् अविज्ञातः कालः परम दुस्तरः। एवं गृहेषु सत्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामन् अविज्ञातः कालः परम दुस्तरः।
शब्दार्थ बोलिए।
एवं इस तरह है गृहेषु घरेलू मामलों में सत्तानां अत्यंत आसक्त पुरुषों के प्रमत्तानां देवकूफी से आसक्त तकी हया ऐसे विचारों में निमग्न अत्यक्रामत पार कर गया अविज्ञातः अनजाने कालः नित्य समय परम दुस्तरः दुर्लंघ है। अनुवाद में रिपीट बोली। जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते जाते हैं उन्हें दुस्तर नित्य काल अनजाने ही घर दबोचता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की आप तो ध्यान से सुनिए तात्पर्य और इस श्लोक के शब्दों को प्रभुपाद कैसे समझा रहे हैं इसको आप देखिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो शुरू कर रहे हैं तात्पर्य में जो बात शुरू कर रहे हैं वो इसके दो शब्द हैं। एक तो है सत्ता नाम और दूसरा प्रमत्ता नाम। तो जो घर में आ सकते हैं और प्रमत्त हैं तो उसका जो है प्रभुपाद जी विस्तार से समझा रहे हैं इस बात को। घर में आ सकते और प्रमत्त इसको प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं क्या विचार है उसके जो अपने घर में आ सकते हैं और प्रमत्त हैं। प्रमत्त का मतलब पागल है। प्रा का मतलब प्रकृष्ट रूपेण और मत माने पागल। घर में आ सकते हैं और बहुत पागल हैं। तो उनकी स्थिति क्या है क्या सोचते हैं मैं अब सुखी हूँ मैं अब सुखी हूँ अब सब कुछ ठीक ठाक है मेरे पास बैंक में प्रचुर धन है अब मैं अपने लड़कों को काफी जागीर दे सकता हूँ अब मैं विजयी हूँ। ये भिखारी सन्यासी ईश्वर पर आश्रित तो रहते हैं किंतु मेरे सामने हाथ फैलाते हैं, अतः मैं परमेश्वर से भी बढ़कर हूँ। तो प्रभु लिखते हैं ये कुछ विचार हैं जो उन प्रमत्त आसक्त गृहस्थों के मनों में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, जो नित्य काल के प्रति अचेत रहते हैं, वो बिल्कुल बेहोश हैं। नित्य काल मतलब मृत्यु है ना, मृत्यु के प्रति वो बिल्कुल अचेत हैं, उनको बिल्कुल होश नहीं है कि मौत उनके सिर में बैठी है ना, और किसी समय उनको उड़ा देगी, पता नहीं चलेगा है ना। और वो क्या सोच रहे हैं ना? कि हमारी स्त्री बहुत अच्छी है, और हंसते हैं जो भगवान पर आश्रित भक्त हैं उन पर हंसते हैं कि मैं ज्यादा अच्छा हूँ है ना। तो ये जो है आसक्त और प्रमत्त, अगर हम लोग ध्यान से नहीं सुन रहे तो हम भी इसी हाल में रहेंगे, ये हाल रहेगा हमारा भी। किस समय कैसे हम संकट में पड़ जाएं हम नहीं जानते, दूसरों को देख करके हंसते हैं। ये भगवान पर आश्रित है लेकिन ये मूर्ख है, इसको जो है कुछ भी सुख नहीं मिल रहा है, मुझे कितना सुख मिल रहा है, मैं भगवान से ज्यादा श्रेष्ठ हूँ, चाहे वो कहे नहीं ऐसी बात, क्योंकि तो शिष्टाचार के अनुसार ये बात कहने में उचित नहीं लगती है, क्योंकि कुछ समाज का दबाव है, लेकिन फिर भी अपने दिमाग में ये विचार रहता है कि मैं ईश्वर से ज्यादा श्रेष्ठ हूँ। विशेष रूप जो व्यक्ति भक्तों का अपराध करता है, भक्तों को देख के हंसता है, भक्तों का मजाक उड़ाता है, अपमान करता है भक्तों का, तो वो अपने को भगवान से ज्यादा अच्छा समझता है। तो ये प्रमत्त आसक्त और प्रमत्त, तो ये गृहस्थों के मनों में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं विचार, उमड़ते घुमड़ते जैसे कि आकाश में बादल, बादलों की घटा उमड़ती घुमड़ती है, इस प्रकार से उनका दिमाग अशांत रहता है, बहुत अशांत रहता है, इसको कहते हैं प्रमत्त आसक्त और प्रमत्त। इस श्लोक में जो शब्द है एवं गृहेतु शक्ता नाम, तो वो काल आ गया, तो ऐसे लोगों का काल आ गया। तो आप जानते किसके लिए कहा जा रहा है ये, कि जो है, है? ग्रह मेधियों के लिए, लेकिन यहाँ पर कथा क्या चल रही है, धृतराष्ट्र का ग्रह त्याग। हाँ, लेकिन इसके पिछले श्लोक में था कि युधिष्ठिर महाराज जो है प्रसन्न है, क्यों प्रसन्न है, कि उनका पौत्र जो है उनके कुल के यश को धारण करेगा, और जो उनके भाई हैं वो लोकपालों के समान शक्तिशाली हैं, तो और उनको बहुत संपत्ति प्राप्त हो गई है, तो जिससे महाराज प्रसन्न है। तो अब यहाँ पर बताया जाता है कि ऐसे घर में जो आ सकते हैं उनके लिए काल आ गया, लेकिन वास्तव में युधिष्ठिर और उनके भाइयों के लिए नहीं है, ऐसा लगता है जैसे धृतराष्ट्र के लिए है, धृतराष्ट्र के लिए, क्योंकि अभी ये जो श्लोक है यहाँ से ये दूसरा विषय शुरू हो गया इस श्लोक में, जिसके पहले जो विषय था युधिष्ठिर महाराज का वो तो समाप्त हो गया है ना। और प्रभुपाद जी के तात्पर्य में ना बताएं तो हम अपराध करें, हम अपराध करते कि युधिष्ठिर और उनके भाइयों के लिए ये कहा गया है कि अंतिम काल आ गया, नहीं उनके लिए नहीं है, ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत उपयोगी है, जैसे कि हम अपराध न करें, युधिष्ठिर महाराज और जो पांचों पांडव हैं द्रौपदी हैं उनका अपराध न करें, वास्तव में ये था धृतराष्ट्र के लिए। तो आगे हम सुनेंगे प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, हमारी आयु सीमित है और परम इच्छा से नियत काल के विपरीत इसे एक क्षण भी बढ़ा पाना संभव नहीं है। नियत काल का मतलब मृत्यु का समय जो निश्चित है, मृत्यु का समय निश्चित है, तो उसके विरुद्ध एक क्षण भी बढ़ा नहीं सकते हम जो निश्चित है। जैसे कि वसुदेव जी ने कंस से कहा मृत्यु जन्म बताम वीर देहे न सह जाए थे, जो मृत्यु है वो देह के साथ ही तैयार होती है, बनती है, निश्चित निश्चित होती है। जिस समय देह बना था, देह का जन्म हुआ था, उस समय मृत्यु का भी मृत्यु भी निश्चित हो चुका है, मृत्यु का समय भी निश्चित हो चुका है। अद्यवाद्य सताम देवा मृत्युर्वय प्राणिनां ध्रुवा, आज हो या 100 साल के बाद हो, लेकिन वो मृत्यु का समय निश्चित हो चुका है। ये है तो प्रभुपाद लिखते हैं कि उसके विरुद्ध एक क्षण भी बढ़ा नहीं सकते हैं। एक क्षण का मतलब 4 मिनट, तो एक क्षण भी कोई व्यक्ति बढ़ा नहीं सकता है, मृत्यु को टाल नहीं सकता है। तो फिर प्रभुपाद लिखते हैं, मनुष्यों के लिए ऐसा समय अत्यंत मूल्यवान है और इसे सतर्कता से बिताया जाना चाहिए, क्योंकि अदृश्य रूप से बीते एक क्षण को कठिन कमाई से नहीं जा सकता। एक तरफ हजारों सोने के सिक्के हैं, बहुत परिश्रम करके आपने कमाया है, तो ये सब दे करके भी एक क्षण भी आप नहीं वापस ला सकते हैं, जो कि आपने गुजार दिया है किसमें, असावधानी में, पागलपन में, हंसी मजाक में गुजार दिया। वो जो क्षण है हंसी मजाक में जो गुजर गया है, हजारों सोने के सिक्के भी देकर के आप वापस नहीं ला सकते हैं। आगे, मानव जीवन का प्रत्येक क्षण अंततः जीवन की समस्याओं को हल करने के निमित्त अर्थात बारंबार जन्म मृत्यु एवं 84 लाख योनियों में भटकते रहने से छुटकारा पाने के लिए है। प्रत्येक क्षण, मनुष्य के जीवन का प्रत्येक क्षण, इसलिए भक्ति का एक लक्षण क्या है, अभ्यर्थ कालत्वम, कि अपने समय को वो नष्ट नहीं करता फालतू की हंसी मजाक में, क्योंकि एक क्षण जो है ना, जो आपने बेकार में बिता दिया है, तो वो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि इस भाव सागर में ये मनुष्य का जीवन नौका के समान है, और एक एक क्षण जो है आप इसको क्या कर सकते हैं, किनारे की तरफ ला सकते हैं। जैसे कि चप्पू होता है ना नाव में, तो एक चप्पू आपने जब चलाया तो एक कदम नाव आगे बढ़ गई, तो एक एक क्षण में आप जो ना एक एक चप्पू चला करके किनारे की तरफ आप ले जा सकते हैं। तो कैसे क्या करें, अगर आपके पास एक क्षण जो है ना मिला, 4 मिनट का समय मिला है, उसको आप अगर उपयोग करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, क्या करें, भगवान का नाम कैसे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये क्या हुआ, अगर मनुष्य का जीवन नौका है तो आपने एक चप्पू चला दिया, आप नौका में बैठे हैं पर हंसी मजाक में आपने वो चप्पू चलाना बंद कर दिया, और हंसी मजाक छोड़ करके आपने एक उसमें हाथ मार दिया, तो नौका जो है आपकी किनारे की तरफ एक कदम आगे बढ़ गई, है ना। इस तरह से जो है एक क्षण प्रभुपाद लिखते हैं कि छुटकारा पाने के लिए है, मतलब भव सागर को पार करने के लिए है। वैसे पता नहीं चलता है, क्योंकि समुद्र असीमित समुद्र है, उसका किनारा नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन तो भी किनारे की तरफ जा रही है आपकी नौका। अगर आप ये हरे कृष्ण महामंत्र भी बोल रहे हैं तो आपकी नौका किनारे की तरफ जा रही है अनजाने में भी। आगे, ये भौतिक शरीर जो जन्म तथा मृत्यु, रोग तथा बुढ़ापा से ग्रस्त होता रहता है, जीव के समस्त कष्टों की जड़ है, अन्यथा जीव तो शाश्वत है। तो प्रभु जी क्या बता रहे हैं कि आत्मज्ञान के लिए दो बातें जानना बहुत जरूरी है, मनुष्य के जीवन में दो बातें जानना बहुत जरूरी है। पहली बात क्या है, ये शरीर क्या है, समस्त कष्टों की जड़ है ये शरीर, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी ये कष्ट ये प्रदान कर रहा है कि सब कष्टों की जड़ है। और दूसरा क्या है कि जीव शाश्वत है, तो जब जीव शाश्वत है तो इसको ये कष्ट देने वाला शरीर क्यों प्राप्त होता है, इसको हम कैसे छुड़ाए, शरीर के बंधन से कैसे छुड़ाए, तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी ने जितना साहित्य लिखा है शरीर और जीवात्मा के बीच में अंतर की स्थापना की है, और बार बार इन बातों को प्रभुपाद दोहराते हैं। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी अपने दैनिक कार्यों में भी अपने शिष्यों को याद दिलाते रहते थे कि तुम ये शरीर नहीं हो, ये शरीर जो है शरीर अविद्या जाल, अविद्या का जाल है ना, ये दुख का कारण है। ना तो वह कभी जन्मता है ना कभी मरता है। मूर्ख लोग इस समस्या को भूल जाते हैं, उन्हें इसका पता ही नहीं रहता कि जीवन की समस्याओं को किस तरह हल किया जाए। उल्टे वे क्षणिक पारिवारिक झंझटों में उलझे रहते हैं और उनकी समझ में ये नहीं आता कि शाश्वत समय अदृश्य होकर बीतता जा रहा है। उनकी सीमित आयु हर क्षण घटती जा रही है और जन्म मृत्यु एवं रोग तथा बुढ़ापे के चक्कर की सबसे बड़ी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है, यह मोह कहलाता है। तो इसी को ही मोह कह रहे हैं या पागलपन कहते हैं, मूर्खता। आगे, किंतु जो व्यक्ति भगवान की भक्ति के प्रति जागरूक रहता है उस पर मोह प्रभाव नहीं डाल सकता। तो ये जो है ना एक निश्चित नियम है कि अगर कोई व्यक्ति मोह से मुक्त होना चाहता है तो भगवान की भक्ति के प्रति जागरूक रहे। अगर वो नहीं भी जानता है, अगर वो जैसे ये जो जन्म मरण के जो विचार हैं, अगर वो नहीं भी सोचता है या नहीं भी सुनता है, अगर भगवान की भक्ति में लगा रहता है तो वो जागरूक रहता है। उसकी जो चेतना है वो जागती रहती है इस दिशा में। जैसे आप कह सकते हैं कि ब्रजवासी, तो ब्रजवासी कृष्ण से प्रेम करते हैं तो वे वैसे जानते नहीं ज्यादा कि अगला जन्म क्या है और पिछला जन्म क्या है, जन्म मरण का रहस्य क्या है, वो नहीं जानते। लेकिन फिर भी वो जागरूक हैं, वो जागृत हैं, उनके ऊपर मोह का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे नंद महाराज कहते हैं कर्म विभ्राम में माणाणाम यह त्रिपाती सुरेक्षा, ईश्वर की इच्छा से कर्म के अनुसार हमें जहाँ भी जन्म मिले, नंद महाराज कहते हैं हमें इसकी चिंता नहीं है। मंगलाचरित कृष्ण ईश्वर, हमने जो कुछ भी मंगल आचरण किया है, दान किया है, उसका फल ये हो कि कृष्ण नामक परमेश्वर में हमारी रति बनी रहे, हमारी आसक्ति बनी रहे। उनको चिंता नहीं है कि उनको कैसा शरीर मिले, वो कहते कैसा भी शरीर मिले कर्म के अनुसार मिले, लेकिन उन्हें क्या क्या चाहिए, कृष्ण के प्रति आसक्ति चाहिए, कृष्ण में आसक्ति चाहिए। तो उनको फिर जन्म मरण की चिंता नहीं होती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति रहे सुजीत, जन्म जन्म है ना। तो भगवान की भक्ति से जो है व्यक्ति इस मोह से मुक्त हो जाता है, भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति होगी ही। अनर्थ में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब अनर्थ कहलाते हैं, तो ये अनर्थ जरूर ही दूर होंगे। आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं अनर्थ दूर होंगे भजन क्रिया से, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं अनर्थ दूर होंगे भजन क्रिया से। भक्ति जो है ज्ञान और वैराग्य को जन्म देती है। एक श्लोक है ऐसा जिसमें जिसमें पता चलता है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को जन्म देती है। जन्यत्यासु वैराग्यम ज्ञानम चेत अहेतुकम् वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः, जन्यत्यासु वैराग्यम ज्ञानम चेत अहेतुकम्। तो अहेतुक ज्ञान जो है उत्पन्न करती है भक्ति। अगर भगवान के साथ भक्ति को जो है अगर जोड़ा जाता है तो वैराग्य और ज्ञान उत्पन्न होता है उससे। आप नहीं चाहते हैं तो भी होगा, आप नहीं जानते हैं तो भी होगा। भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति होती है ना, अनर्थ दूर होते हैं और निष्ठा प्राप्त होती है। अनर्थ निवृत्ति निष्ठा प्राप्त होती है। तो वैराग्य का मतलब आप कह सकते हैं अनर्थ दूर होते हैं तो उसी को वैराग्य कह सकते हैं, और है तो ज्ञान पैदा होता है इसको निष्ठा कह सकते हैं। किंतु होता है, निश्चित होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं किंतु जो व्यक्ति भगवान की भक्ति के प्रति जागरूक रहता है उस पर मोह प्रभाव नहीं डाल सकता। युधिष्ठिर महाराज तथा उनके भाई पांडव सभी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते थे और उन्हें इस भौतिक जगत के मायावी सुख के प्रति तनिक भी आकर्षण न था। तो प्रभुपाद जी इस बात से हमें सचेत कर रहे हैं कि हम ये न सोचें कि युधिष्ठिर महाराज जो प्रसन्न हो रहे हैं, प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं कि उनका पौत्र जो है कुल के अस्त्र धारण करेगा और उनके भाई लोकपालों के समान शक्तिशाली हैं तो प्रसन्न हो रहे हैं, तो ये उनके लिए है, युधिष्ठिर महाराज के लिए नहीं है। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को मायावी सुख के प्रति तनिक भी आकर्षण न था। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, महाराज युधिष्ठिर भगवान मुकुंद मोक्षदाता भगवान की सेवा में अचल थे, अतः उन्हें स्वर्ग में उपलब्ध जीवन के सुख का भी आकर्षण न था, क्योंकि ब्रह्मलोक तक में उपलब्ध सुख क्षणिक तथा भ्रामक होता है। तो प्रभुपाद जी ये बात बताई है, ये घटना महाभारत में है। क्या प्रभुपाद ने क्या बताया युधिष्ठिर महाराज के बारे में? स्वर्ग के सुख का भी उनको आकर्षण नहीं है युधिष्ठिर महाराज को। जब उनको स्वर्ग में ले जाया गया, युधिष्ठिर महाराज को स्वर्ग में ले जाया गया, तो उनको कोई प्रसन्नता नहीं हो रही। स्वर्ग में जाकर के उनके भोगों में कोई भी आकर्षण नहीं युधिष्ठिर महाराज को। वो क्या देखना चाहते हैं कि मेरे भाई कहाँ हैं और द्रौपदी कहाँ हैं। जिन भाइयों के साथ और द्रौपदी के साथ हमने सुख का बंटवारा किया है तो उनके बिना हम कैसे ये सब सुख भोगेंगे युधिष्ठिर महाराज। वो देखना चाहते हैं कि उनके भाई और जो है ना द्रौपदी कहाँ है, वो किसी प्रकार से भी स्वर्ग के सुख में आ सकते नहीं है। बल्कि एक और भी घटना इसके पहले हुई कि एक कुत्ता जो है ना उनके साथ आ रहा था। जब द्रौपदी गिर पड़े रास्ते में और फिर अर्जुन गिर पड़े, नकुल सहदेव भीम सब गिर गए, एक कुत्ता साथ चल रहा था। तो जब विमान आया स्वर्ग में जाने के लिए, युधिष्ठिर महाराज मना करते हैं विमान बैठने से। बोले कि अगर ये कुत्ता को आप बैठाओगे विमान में तो फिर मैं जाऊंगा स्वर्ग में, तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ जिसने मेरा साथ दिया है तो अब ये तो निश्चित नियम है। युधिष्ठिर महाराज जी जानते हैं कि कुत्ते को स्वर्ग में नहीं ले जाया जा सकता है ना, जैसे कुत्ता को मंदिर में प्रवेश कर देते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज जानते हैं कि ये नियम है, तो वो फिर बैठने से मना करते हैं, विमान में बैठने से मना करते हैं कि मैं नहीं जा सकता स्वर्ग में इस कुत्ता के बिना। तो आपने देखा कि मतलब कितना अधिक जो है ना उनकी जो निष्ठा है अपने कर्तव्य के प्रति है। समा सर्वेषु भूतेषु है ना। तो युधिष्ठिर महाराज जो है अपने भाइयों के जो है ना बिना अपने भाइयों से अलग होकर के, द्रौपदी से अलग होकर के स्वर्ग के सुख को नहीं भोगना चाहते हैं। वो बार बार कहते हैं, जो देवदूत हैं वो बार बार कहते हैं कि आप अपने कर्मों से भोगिए, तब अपने अपने कर्मों से जो है अपनी अपनी गति प्राप्त करते हैं, आप भोगिए स्वर्ग का सुख। युधिष्ठिर कहते नहीं, पहले मुझे बताओ मेरे भाई कहाँ हैं, मेरे जो है ना भाई कहाँ हैं, द्रौपदी कहाँ हैं, पहले मैं उनको देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने सब कुछ जो है ना, सब प्रकार के संकट मेरे साथ सहन किए, दुख में हमेशा मेरे साथ रहे। अब ये सब जो सुख है मैं उनके बिना नहीं भोग सकता। तो फिर इंद्र की माया थी कि दूसरे को जहाँ नरक का दृश्य दिखाया गया उसमें उनके भाई और द्रौपदी नरक में दिखाए गए, नरक में है। तो उनको बहुत दुख हुआ, बड़ा गुस्सा भी आया कि सब क्या व्यवस्था है, जिन्होंने कोई अधर्म नहीं किया उनको जो नरक दिखाए, नरक में उनको डाला गया है। और युधिष्ठिर महाराज से कहा जाता है कि आप चलो, आपको तो स्वर्ग भोगना है। वो कहते नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रहूंगा। तो इस तरह से पता चलता है कि प्रभुपाद जो लिख रहे हैं ये बात जो है पुष्ट है महाभारत में। प्रभुपाद लिखते हैं अतः उन्हें स्वर्ग में उपलब्ध जीवन के सुख का भी आकर्षण ना था, क्योंकि ब्रह्म लोक तक में उपलब्ध सुख क्षणिक तथा भ्रामक होता है। ब्रह्मलोक में भी सुख क्षणिक और भ्रामक है। वैसे लगता क्या है, अगर हम अपनी दृष्टि से देखें, अपनी गणना से देखें, तो ब्रह्मलोक का जानते हो एक सेकंड, ब्रह्मलोक का एक सेकंड यहाँ कि कितने समय के बराबर है, एक साल, कितना, 1,00,000 साल। ब्रह्मलोक का एक सेकंड यहाँ के 1,00,000 साल के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से वहां का जो एक दिन है अगर आप गणना करो तो 4,32,00,000,000,000 साल का होता है, 1,000 चतुर्युगी। तो कितना बड़ा दिन है, इस प्रकार के इतने बड़े दिन, इतने बड़े रात हैं, और वहां पर भी सुख भोग है। तो फिर क्या है, हमारी गणना के अनुसार तो असीमित है, लेकिन प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि ब्रह्मलोक की गणना से वो भी क्षणिक है। फिर वहां पर आप एक सेकंड ही तो बताते हैं यहाँ के 1,00,000 साल बीतते हैं, ये वहां पर जाकर के आपका एक सेकंड ही तो निकल गया वो, है कि नहीं। जैसे यहाँ के दिन बीतते हैं वैसे वहां के भी दिन बीतते हैं, तो क्या अंतर पड़ा। इसलिए एक भ्रामक है कि ब्रह्मलोक में जाएं तो हम जो है बहुत सुख भोगेंगे, ये भी एक भ्रम है, लेकिन जैसे रेवती के पिता थे महाराज कपूर्णी, ब्रह्मलोक में 20 मिनट उन्होंने बिताए, 20 मिनट बीते तो भी ज्यादा समय थोड़ी था, 20 मिनट बीते तो अपनी कन्या के लिए वर पूछ रहे थे कि आप मेरी कन्या के लिए वर बताइए। तो ब्रह्मा जी हंसे कि तुम क्या सो, चार योग बीत चुके हैं, सत्ययोग द्वापर कली, चार योग 28 बार बीत चुके हैं, 12,00,000,000 साल बीत चुके हैं वहां के 20 मिनट में, यहाँ के 12,00,000 साल चुके हैं, अब जल्दी जाओ बलराम जी है, अपनी कन्या का विवाह बलराम जी के साथ करो जल्दी, अगर तुमने देर करी तो वो भी समय निकल जाएगा, जल्दी जाओ। तो इस तरह से एक भ्रम है कि ब्रह्मलोक में बहुत सुख है। ऐसे अगर देखा जाए तो ब्रह्मा जी की आयु हमारी गणना के अनुसार बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। हमने उसकी गणना की थी तो कितना निकलता है, 31,10,40,000,000,000 वर्ष ब्रह्मा जी की आयु यहाँ के हिसाब से। ये सब तो क्षणिक और भ्रामक है, क्योंकि जीव शाश्वत है, अतः वह भगवान के नित्य धाम परम व्योम में ही सुखी रह सकता है, जहाँ से बारंबार जन्म मृत्यु रोग तथा बुढ़ापे के इस भूभाग में कोई नहीं लौटता। अतः ऐसा कोई भी सुख या भौतिक सुविधा जो शाश्वत जीवन नहीं प्रदान कर सकती नित्य जीव के लिए भ्रम ही है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह विद्वान है, और ऐसा विद्वान व्यक्ति ब्रह्म सुखम के नाम से विख्यात वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी भौतिक सुख का बलिदान कर सकता है। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, जो मोह से मुक्त है, जो भ्रम से मुक्त है, जो वास्तव में मनुष्य जीवन में जाग रहा है, तो हर प्रकार के भौतिक सुखों को त्यागने के लिए तैयार है। किसके लिए, ब्रह्म सुख प्राप्त करने के लिए। ब्रह्म सुख जो कैसा होता है, ब्रह्म सौख्यम तुरंतम, जिसका अंत नहीं है, जो वैकुंठ की प्राप्ति है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस सुख के लिए वास्तविक योगी तक लालायित रहते हैं और जिस तरह भूखा व्यक्ति भोजन के बिना समस्त सुख सुविधाओं से सुखी नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार जैसे आध्यात्मिक परम सुख की भूख है, उसे कितना ही भौतिक सुख क्यों न प्राप्त हो, किंतु इसकी यह भूख बुझती नहीं। तो यह है ज्ञान। जो व्यक्ति ज्ञान के धरातल पर आता है, तो भौतिक संसार की किसी भी सुख सुविधा में वो सुखी नहीं हो सकता, कभी प्रसन्न नहीं हो सकता, क्योंकि वो जानता है कि एक दिन ये जो है समाप्त हो जाएगा। जो भी स्थिति है, वो केवल वैकुंठ की प्राप्ति करना चाहता है। ऐसे जागरूक व्यक्ति की तुलना, जो जो ज्ञान में से है, इसकी तुलना कर रहे हैं किससे? एक भूखा व्यक्ति, एक भूखा व्यक्ति, उसको सब प्रकार का सुख प्राप्त हो जाए, सब प्रकार के सुख भोग प्राप्त हों। एक वो भूखा है, आप उसको जो है चंदन लगाते हो, उसकी मालिश करते हो, माला बनाते हो, उसकी आरती करते हो, पूजा करते हो, वो भूखा है, उसको कैसा लगेगा? और डिस्टर्बेंस होगा, और डिस्टर्बेंस होगा, है कि नहीं? क्योंकि वो भूखा है, उसको तो भोजन चाहिए, पर आप भोजन ना दे करके उसको सब कुछ दे रहे हो, सब प्रकार की सुख सुविधाएं दे रहे हो। प्रभु जी आपके लिए इतना सुंदर कमरा हमें दिया है, इतना अच्छा बिस्तर दिया है, इतना अच्छा बाथरूम दिया है, ये है वो है, और भोजन नहीं दे रहे हैं, कैसा लगता है? है कि नहीं? तो इस प्रकार से जो है, जो ज्ञान में से है व्यक्ति, तो वो वैकुंठ की प्राप्ति की सेवा, तो भौतिक संसार में कोई भी जो है सुख से संतुष्ट नहीं हो सकता है। अतः रूपा लिखते हैं, इस श्लोक में वर्णित उपदेश को महाराज युधिष्ठिर पर या उनके भाइयों तथा माता पर लागू नहीं किया जा सकता। माता कुंती देवी, माता कुंती देवी और युधिष्ठिर के भाइयों और युधिष्ठिर पर ये श्लोक लागू नहीं किया जा सकता। इस बात को समझे, ये बहुत अच्छा तात्पर्य है रूपा जी का, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर इस कथा के प्रवाह को अगर वो पढ़ता है और सुनता है, तो कैसा लगता है कि भाई पिछले श्लोक में तो कहा युधिष्ठिर महाराज जो है मुमुदे, मतलब बड़े प्रसन्न हो गए, परम प्रयात्रिया, बहुत उनको संपत्ति प्राप्त हो गई, युधिष्ठिर महाराज प्रसन्न हो गए, और अब आ गया है कि किस प्रकार से घर में जो आ सकते हैं और प्रमत्त है उनके लिए वो जो काल है अभिज्ञात है, अभिज्ञात काल है, मतलब बिना किसी नोटिस दिए हुए वो काल आ गया, परम दुष्कर, जिसको भी रोका नहीं जा सकता। तो लगता है कि युधिष्ठिर और कुंती महारानी और उनके जो भाई हैं उनके लिए ये कहा जा रहा है ना, लेकिन नहीं, प्रभुपाद जी का तात्पर्य जो है बहुत उपयोगी है, क्योंकि आगे फिर श्लोक आएगा, विदुर सदा भी प्रेत है धृतराष्ट्र अभासत है। विदुर ने ये देखा और धृतराष्ट्र से कहा, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मृत्यु है जो अज्ञात रूप में आ गई है वो धृतराष्ट्र की है, धृतराष्ट्र की। तो विदुर ने ये देख करके धृतराष्ट्र से कहा, धृतराष्ट्र को जगाया कि तुम भागो घर से, तुम निकलो घर से। राजन निर्गम्यताम शीघ्रम पश्चेतम भयमागतम, हे राजन अब जल्दी निकलो घर से, बाहर जल्दी निकलो, पश्चेतम भयम आगतम, देखो ये भय आ गया है। जो प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा है, ये श्लोक जो है धृतराष्ट्र के लिए है, पांडवों के लिए नहीं है। तो पहले से ही प्रभुपाद जी हमको सूचना दे रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज की जो प्रसन्नता है ये जो है भौतिक प्रसन्नता नहीं है, आध्यात्मिक प्रसन्नता है। उनको बहुत संपत्ति प्राप्त हो गई तो वो प्रसन्न हो रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, ये वास्तव में भगवान की भक्ति की असली प्रसन्नता है। क्या एक तो प्रसन्नता है युधिष्ठिर महाराज की, दृष्टा पौत्रम कुलंधरम, कि कुल की कीर्ति को जो है धारण करेगा ऐसा पौत्र उनको प्राप्त हुआ है ना। तो ये युधिष्ठिर महाराज की चिंता थी, चिंता क्यों, क्योंकि उनको तो जाना है, उनको तो छोड़ना है, और चिंता है कि ये पृथ्वी का राज्य जो है उसी प्रकार से चलता रहे जैसे वो चला रहे हैं। भगवान कृष्ण के निर्देशन में जैसे धर्म की स्थापना हुई है तो ये किसी प्रकार से टूटने ना पाए। तो युधिष्ठिर की जो चिंता है ये वास्तव में भगवान की चिंता है। और युधिष्ठिर की जो प्रसन्नता है जब देख रहे हैं कि परीक्षक इसको ठीक से चला सकेगा तो ये भगवान की प्रसन्नता है। युधिष्ठिर महाराज की जो प्रसन्नता है वो ये अज्ञान की नहीं है, अज्ञान नहीं है। और धात्र भी लोकपाल है और उन्होंने ये भी देखा कि उनके भाई जो है लोकपालों के समान शक्तिशाली हैं, तो उनके सहारे जैसे महाराज राज्य शासन को ठीक से चला रहे हैं, धर्म की स्थापना करने में उनके भाई सहायक हैं, तो ये जो प्रसन्नता है मुझे जैसे महाराज को प्रसन्न हो रहे हैं कि ये अज्ञान नहीं है, ये ज्ञान है। अब हम लोग कुछ और चर्चा कर सकते हैं कि जो व्यक्ति अज्ञान में भूला रहता है, अपने घर में आसक्त रहता है और वो नहीं देखता है कि मृत्यु उसके सिर में बैठी है। इसके बारे में एक श्लोक है, निश्वास नहीं विश्वास तथा रुद्ध भविष्य तीर्थ नियम अतो बाल्या हरे नाम है विश्व विलंब। निश्वास का कोई विश्वास नहीं कि कब रुक जाए, कब रुक जाए। इसलिए बचपन से ही हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए। एक गजेंद्र की कथा भी आती है श्रीमद् भागवत में 8वें स्कंद में, बहुत प्रसिद्ध कथा है गजेंद्र की। उसमें सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं गजेंद्र का कि जब उसको संकट में पड़ना था, बहुत बड़ा संकट अभी एक क्षण में आने वाला है और वो जो है प्रसन्न हो रहा है गजेंद्र, उसे पता नहीं कि कितने बड़े संकट में वो पड़ने वाला है। और वो क्या कर रहा है, अपनी पत्नियों को बच्चों को अपने स्पोर से वो नहला रहा है। तो अपने सुंदर को स्वामी कहते हैं कि आसक्त गृहस्थ के समान जो है ना वो अपनी पत्नियों और बच्चों को नहलाने में लगा हुआ है और उसको पता नहीं कितना बड़ा संकट उसके सामने आने वाला है। क्या संकट आया, ग्राहक उसका पैर पकड़ लिया और बहुत बड़े संकट में पड़ गया और फिर कोई नहीं बचा सकता था। जिन पत्नियों और बच्चों की वो सेवा कर रहा है वो उसको नहीं बचा सकते है ना, भगवान की सेवा को नहीं बचा सकते है ना। तो वो आसक्त गृहस्थ के समान है। अजामिल को भी छत्तीसगढ़ में अजामिल कहता है, अजामिल को भी मूढ़ और अज्ञ कहा है सुखदेव गोस्वामी ने, मूढ़ और अज्ञ कहा है। अपने पुत्र में वो मन लगाए हुए था और उसकी मृत्यु आ गई तो मूढ़ और अज्ञानी, क्योंकि उसको पता नहीं था उसकी मौत आ गई, फिर भी उसकी रक्षा हो गई क्योंकि अपने पुत्र को नारायण बोलता था, एक चांस उसकी रक्षा हो गई। लेकिन फिर भी हमने कहते कि ऐसी स्थिति हो क्योंकि शुरू में तो भय आया उसको, इसलिए मूढ़ और अज्ञानी फिर भी उसको सुखदेव गोस्वामी ने कहा। यद्यपि वो जो है अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कर रहा था अनजान में भी, उसको पता नहीं था कि उसकी सुरक्षा हो रही है नारायण के नाम से, वो कर रहा था अपनी व्यवस्था और उसकी सुरक्षा हुई थी। लेकिन फिर भी शुरू में उसको भय प्राप्त हुआ अजामिल को, और जब उसकी रक्षा हो गई, जमदूत चले गए और विष्णुदूत चले गए, तब फिर उसने तब वो सचेत हो गया, जागरूक हो गया कि अब ना आए ऐसा अवसर, भय का अवसर अब दोबारा ना आए। तो फिर तीव्र भक्ति उसने की, बहुत सावधान हो गया, तीव्र भक्ति की कि अब दोबारा यमदूत ना आए उसके सामने। तो हमें शिक्षा देनी थी कि इस तरह से जो है हम करें अपनी भक्ति, इस तरह से करें कि भय आए ही नहीं। हमें कहते कि भय जरा भी थोड़ा सा भी भय प्राप्त हो मृत्यु का, तो अजामिल की तरह भी जो है ना हम नहीं कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए तो भय प्राप्त हुआ और बहुत भय प्राप्त हुआ, यमदूत दिखाई दिए और उन्होंने उसको बांधना शुरू कर दिया और उसको जो है ना निकालने लगे, उसको शरीर से निकालने लगे बाहर। इसी प्रकार से भरत महाराज के बारे में भी बताया गया है कि उनको पता नहीं चला कि मृत्यु आ गई उनके सामने, उनका मन लगा था हरण में, हरिण की सेवा में वो मन लगाए हुए थे और अपने भजन को भूल रहे थे, अपने भजन के सब नियमों को भूल रहे हैं और हरिण की चिंता कर रहे हैं कि हरिण की कैसे सुरक्षा हो, हरिण की कैसे सुरक्षा हो। तो मृत्यु आ गई और उनको सब पता चला। जब उनको हरिण का शरीर मिल गया, अब क्या हो सकता है, उनको हरिण का शरीर मिल गया तब पता चला उनको क्यों हो, मैंने क्या किया, मैंने अपने को तो बचाया नहीं, दूसरे के चक्कर में मैं खुद ही गिर गया, लेकिन उनको हरिण का शरीर मिल गया, है ना। तो ये है आसक्त और प्रमत्त। तो जो आसक्त प्रमत्त होता है, एक पुलिंग पक्षी की भी कथा है श्रीमद् भागवत के सातवें स्कंध में। पुलिंग पक्षी अपनी पत्नी के साथ वो फुटक रहा है और उसकी पत्नी शिकारे के जाल में फंस गई। अब वो जो है वो शोक करने लगा कि पत्नी की तरह तो जीवन बेकार है, अब पुत्र जो बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं, वो अपनी माता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनको जाकर के क्या कहूँगा, पत्नी के बिना इन बच्चों को मैं कैसे पालूंगा, और मेरा भी जीवन अब जो है अब कोई सुख नहीं रहा मेरे जीवन में, तो इस प्रकार से शोक कर रहा है। और उसको पता नहीं था कि अब अगले क्षण में उसकी भी मौत होने वाली, अपनी मौत को नहीं देख रहा, वो शोक कर रहा है कि जीवन कैसे मेरा सुखी होगा पत्नी के बिना। अगले क्षण क्या हुआ, शिकारी ने एक बांध उसको खत्म कर दिया, वो खुद मर गया। जिसको कहते हैं प्रमत्त, है ना। तो ये हाल है इस भौतिक संसार में, जो ना ये हाल है हर व्यक्ति जब तक उसकी मौत नहीं आ जाती है तब तक वो देखते नहीं मौत को, लेकिन हम लोगों के लिए क्यों कहा जाता है कि हम लोग हमेशा श्रवण करें, हमेशा श्रवण करें, ताकि हम हमेशा देखें कि मृत्यु है और हमें इसके लिए क्या करना है। इसको कहते हैं जागरण, इसको कहते हैं जागरण। नहीं तो वही प्रमत्त और आसक्त है, हर कोई प्रमत्त और आसक्त है। हम लोग भी जो ब्रह्मचारी हैं वो भी आसक्त हैं, प्रमत्त हैं, अपने खाने सोने की चिंता में लगे हैं कि कैसे किस प्रकार से खाएं, कैसे किस प्रकार से सोए, और नहीं देख रहे हैं कि कैसे मृत्यु आ रही है। आप किसी का कोई प्रश्न है, उनका प्रश्न है कि मैंने बताया है कि जैसे महाराज स्वर्ग में गए और उनके भाई नरक में गए तो ऐसा क्यों है, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने बताया कि इंद्र की माया से जो है युधिष्ठिर को जो है नरक दर्शन कराया गया, ये वास्तव में कुछ माया थी, उनके भाई जो है नरक नहीं गए, है ना। और प्रत्येक भाई के साथ ऐसे हुआ, द्रौपदी के साथ भी ऐसा हुआ, जब शरीर छोड़ा तब ने युधिष्ठिर ने तो शरीर नहीं छोड़ा, लेकिन द्रौपदी और चारों भाइयों ने शरीर छोड़ा, तो वो भी जो है ना जब स्वर्ग में ले जाए गए तो इसी प्रकार से उनको कुलोभन दिया गया कि अपने कर्मों के अनुसार तुम स्वर्ग भोगो। लेकिन सब चाहे अर्जुन हो, चाहे भीम हो, चाहे द्रौपदी हो, वो जो है ना मतलब उन छह में से प्रत्येक जो है ना पांचों का संग कहता है, पांचों का संग कहता है, है ना। तो ये सबके साथ में ये परीक्षा हुई, सबके मतलब उनमें कितना धैर्य है, कितना त्याग है, उनमें आकर्षण नहीं है, स्वर्ग के सुख का आकर्षण नहीं है, तो ये पता चलता है। इनका अच्छा प्रश्न है, इनका प्रश्न है कि जिससे महाराज हैं, मतलब पांचों पांडव हैं, द्रौपदी हैं, जब भगवान के अनन्य भक्त थे तो फिर इनको स्वर्ग की प्राप्ति क्यों हुई, स्वर्ग तो बहुत ही निकट है, तो फिर उनको स्वर्ग की प्राप्ति क्यों हुई। नहीं, जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए स्वर्ग नरक और वैकुंठ में कोई अंतर नहीं है, ये बहुत ऊंची स्थिति है। यहाँ तो प्रभुपाद जी जो बात कर रहे हैं ये शुरू की बात कर रहे हैं कि शुरू में जो ज्ञान प्राप्त होता है भक्ति के द्वारा, तो वो अंतर देखता है कि वैकुंठ में और ये भौतिक संसार में कितना अंतर है। स्वर्ग मिला करके स्वर्ग है और जितने भी सुख है ये सब छोड़ करके भी कोई व्यक्ति वैकुंठ में जाना चाहता है। लेकिन जब भक्ति की और ऊंची अवस्था आती है, जैसे कि भगवान के साथ में जब प्रबल संबंध के साथ हो जाता है भक्ति का, तो फिर उसके लिए कोई अंतर नहीं होता है वैकुंठ में और स्वर्ग में और पृथ्वी में और नरक में कोई अंतर नहीं रहता। जैसे हमने बताया कि नंद महाराज जी कहते हैं कि कोई कर्म जो था जो भी हमें शरीर प्राप्त हो हमें कृष्ण के प्रति आसक्ति हो। प्रसन्न महाप्रभु प्रार्थना करते हैं मम जन्मनि जन्मनि श्री भगवता भक्ति रहस्य, तो कोई अंतर नहीं पड़ता फिर। नारायण पराशर्व न को दर्शन विद्यति स्वर्गा वर्ग नरकेशु अति कुल्यार्थ दर्शन, नारायण के परायण है इसलिए वो किसी प्रकार का भय नहीं है। इनका प्रश्न है कि श्लोक में जो सब सत्ता नाम प्रमत्ता नाम इनके क्या अर्थ है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ सत्ता नाम का क्या अर्थ है बताइए। आसक्त गृहेशु सत्ता नाम घर में आसक्त है वो, ठीक है, और प्रमत्ता नाम पागल है, प्रमत्त प्रमत्त मत माने मत वाला जो शराब है उसको मादक बोलते हैं, मद मद पैदा करती है ना, तो मत का मतलब है जो नशे में है और प्रमत्त का मतलब प्रतिष्ठ रूप है बहुत ज्यादा नशे में है। प्रमत्त जो बहुत ज्यादा नशे में है उसको पता नहीं होता है कि वो कौन है और कहाँ पर है, वो समझता कुछ और है अपने को, वो कुछ और ही है और अपने वो कुछ और ही समझ रहा है, वो कहाँ पर है उसको पता नहीं, वो है कहीं और अपने वो कहीं और समझ रहा है, जो बहुत ज्यादा नशे में हो जैसे कि वो नाली में पड़ा हुआ है, वो नाली में पड़ा हुआ है और वो सोच रहा है हाँ कि वो बड़े अच्छे महल में है, वो नाली में पड़ा हुआ है और कुछ और कुछ जनाव उसको चाट रहे हैं और वो सोच रहा है कि मैं राष्ट्रपति हूँ, है कि नहीं, तो इसको प्रमत्त कहते हैं। उनका प्रश्न है कि बाद में ये भगवान के धाम गए, बाद में भगवान के धाम गए या नहीं गए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ सूचना ये भी मिलती है कि वे जो है वृक्ष बने श्याम कुंड के तट पर, जब रघुनाथ दास गोस्वामी श्याम कुंड का तट बनवा रहे थे तो 6 पेड़ों को कटना था, तो उन्होंने सपना दिया कि हम लोग वो वैसे पेड़ नहीं है साधारण, हम जो है 5 पांडव और 1 द्रौपदी हैं जो ब्रज प्रेम को सिद्ध करने के लिए वृक्ष बने हुए हैं, इसलिए हमें नहीं काटना, इसलिए श्याम कुंड का जो तट है वो पेड़ बना है, वो 6 वृक्षों को नहीं काटा गया। धन्यवाद। महोदय प्रभु कह रहे हैं कि प्रभुपाद से पूछा गया था कि जो 5 पांडव और द्रौपदी हैं ये वैकुंठ धाम गए हैं, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि जहाँ कृष्ण की लीला हो रही है वहाँ पर वो भी गए हुए हैं कृष्ण के साथ, नित्य संगी हैं कृष्ण के, यही मोह है कृष्ण प्रिया कह रहे हैं। अमेरिका में जाते हैं लोग तो सोचते हैं कि 1 डॉलर है यहाँ का कितने के बराबर है, 50 रुपए के बराबर है ना, तो वहां हम बहुत सुखी हो जाएंगे बहुत धनी हो जाएंगे, तो ये सब भ्रम है, स्वर्ग के सुख भी भ्रम है, ब्रह्मलोक के सुख भी भ्रम है। आश्रम भवनान लोका पुनरावर्तन होते हैं, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी स्थान है वो पुनरावर्ती है, छोड़ना पड़ता है, आपको गिरना पड़ता है, आप नहीं गिरना चाहते लेकिन गिरा दिया जाएगा आपको, जबरदस्ती वहां धकेल करके गिरा दिया जाएगा। माओ पेल तो कौन थे पुनर्जन्म बेटते, जो मेरे धाम में आते हैं उनको नहीं गिरना पड़ता है ना, आप गिरना भी नहीं चाहते तो आपको गिराया भी नहीं जाएगा, लेकिन स्वर्ग के आप गिरना नहीं चाहते आपको गिरा दिया जाएगा। क्षीण पुण्य मर्त लोकम विष्णु जी, पुण्य क्षीण होने पर गिरा दिया जाएगा। अच्छा, गोवर्धन प्रभु इस घटना की तुलना कर रहे हैं प्रभुपाद के साथ में, जिससे महाराज उसके को छोड़ करके स्वर्ग नहीं जाना चाहते हैं और प्रभुपाद जी भी अपने शिष्य को छोड़ करके जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं करना चाहते हैं। हाँ, प्रभुपाद जी ने फिर जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया, लेकिन प्रभुपाद का बहुत स्वागत हुआ था और वो उनको कह रहे थे कि स्वामी जी आप जाइए दर्शन कीजिए, आपके साथ जो शिष्य हैं उनका विदेशी शरीर है इसलिए वो नहीं जा सकते हैं, तो प्रभुपाद जी ने फिर जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं किए। बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो यहाँ पर दोनों स्थितियों में कुत्ते सामान्य नहीं है। जो कुत्ता युधिष्ठिर महाराज के साथ था वह स्वयं यमराज थे, जो अपने पुत्र युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए कुत्ता बन गए थे। और प्रभुपाद की भी ये परीक्षा थी कि जो शिष्य उनके साथ थे, यद्यपि उनका शरीर मृत परिवार का था, परंतु वे अब कृष्ण के भक्त बन चुके थे। अगर उन्हें कुत्ता भी कहा जाए तो वे अब सामान्य कुत्ते या माया के कुत्ते न होकर कृष्ण के कुत्ते थे। प्रभुपाद का क्योंकि इन लोगों ने हरे कृष्ण आंदोलन को विदेशों में फैलाने में पूरा साथ दिया था, इसलिए प्रभुपाद कैसे इनको छोड़कर जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते। हाँ, इनका प्रश्न है कि भरत महाराज को तुरंत हरण का शरीर प्राप्त हो गया, परंतु ये भी कहा जाता है कि पहले जीव को यमराज के पास जाना होता है, फिर उसके विषय में निश्चित किया जाता है कि उसे स्वर्ग में या नरक में या किस योनि में जन्म देना है। तो क्या भरत महाराज को यमराज के पास नहीं जाना पड़ा? हाँ, ये निश्चित है। जब तक कोई व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन जाता, तब तक वह यमराज के अधिकार से मुक्त नहीं हो सकता। और भरत महाराज के लिए यमराज बहुत कोमल थे, इसलिए उनको यमलोक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं हुई तथा हरण के शरीर में उनको जन्म यमराज के आदेश से प्राप्त हो गया। ये बातें हमेशा बताई नहीं जाती, परंतु ऐसा है। जो पापी होते हैं उन्हें यमदूत कोड़े मारते हुए ऐसे रास्ते से ले जाते हैं जो बहुत लंबा होता है तथा कटी हुई बालू नीचे होती है और सूर्य ऊपर से कटता है। रास्ते में उस पापी को पानी मांगने पर भी ये पानी नहीं देते, परंतु भगवान के भक्त यदि यमराज के पास जाते भी हैं तो उन्हें ऐसा कष्ट नहीं भोगना पड़ता। अब ये श्लोक धृतराष्ट्र के लिए ही है। इस बात को समझने के लिए हम इस श्लोक पर अब फिर से विचार करेंगे। एवं गृहस्थ सत्ता नाम प्रमत्ता नाम। अब देखिए धृतराष्ट्र घर में कितना आसक्त है। जब पांडवगण छोटे थे तो उसने अपने घर के प्रति आसक्त होने के कारण पांडवों को उनकी माता उनके तहत मरवा डालने के लिए उन्हें वाराणवत में लाक्षाग्रह में भेज दिया। तो ये धृतराष्ट्र की अपने घर में आसक्ति है, उसे चिंता है यदि ये पांडव नहीं मरेंगे तो ये लोग उसके महल के अधिकारी हो जाएंगे। इसलिए धृतराष्ट्र ने पांडवों को मार डालने की कई योजनाएं बनाई। फिर प्रमत्ता नाम। धृतराष्ट्र प्रमत्त है, पागल है, इसलिए उसने पांडवों को जुआ खेलने के लिए विवश किया। और जिस समय पांडवगण अपनी संपत्ति जुए में हार रहे थे तो मैं प्रसन्नता पूर्वक पूछ रहा था कि हमने इस गांव में क्या क्या जीता है, ये पागलपन है। अभी धृतराष्ट्र की आसक्ति कितनी है, जिसके सभी पुत्र मारे गए फिर भी वह उस महल को छोड़ना नहीं चाहता है। वैसे तो पांडवों की ये महानता है कि वे धृतराष्ट्र के साथ पिता जैसा व्यवहार कर रहे हैं, परंतु धृतराष्ट्र को सोचना चाहिए था कि यह कहाँ तक उचित है कि वह अब उन्हीं पांडवों की सेवा ले रहा है जिन्हें उसने मार डालने का प्रयास किया था। अभी धृतराष्ट्र अपने को सुखी समझ रहा है, ये उसकी प्रमुखता है, पागलपन है। हाँ, इनका प्रश्न है कि ये भी कहा जाता है कि आत्मा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया जा सकता, परंतु यहाँ पर आपने ये कहा है कि यमदूत उस जीव को कोड़े मारते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि यमदूत जीवात्मा को पकड़ नहीं सकते हैं। जीवात्मा तो बाल के नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर होता है, परंतु यमदूत तो उस पापी को रस्ते से बांध कर खींचते हैं। तो इतना छोटा जीव तो देखा भी नहीं जा सकता और ना पकड़ा ही जा सकता है, तो फिर कैसे समझें? वास्तव में यमदूत जीव के सूक्ष्म शरीर को पकड़ते हैं। इस फूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी होता है, जैसे आप कोट के अंदर कमीज पहनते हैं। सूक्ष्म शरीर का रूप रंग और आकार लगभग फूल शरीर के ही समान होता है। तो जीव उस शरीर में अपनी वही पहचान भी करता है कि मैं वही हूँ। फिर उसे ये सभी कर्म याद आते हैं जो उसने उसी रूप में किए थे तथा वह उन कर्मों का फल भोग रहा है। धन्यवाद। धनतेरस श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री राधा पार्षदी ललिता विशाखा की जय। श्री त्रिगुणताय भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। हरे कृष्णा।